mind, body and medicine. We hope and believe that you have a beautiful, comfortable and memorable stay here to rejuvenate yourself. So today we have our first session on Beyond the Manifest, My Journey Towards Soul Realization. So for this session, we have our honorable speaker, Dr. Swapan Gupta, MBBS, MD, GM, Neuro, PDF, Epilepsy. So we welcome our beautiful speaker, Dr. Swapan Gupta. So let's have a small introduction about Dr. Swapan Gupta. He has done MBBS, MD from Maulana Azad Medical College, Delhi, and GM training in neuroscience from GB Pant Institute, New Delhi, and advanced epilepsy training at Vains, Italy. He is currently working as an associate professor of neurology at GB Pant Institute, New Delhi. So he recently elected as an academic council member of University of Delhi. He has a special interest into the science behind our thoughts, emotions, actions and the relation between modern neuroscience, spiritual knowledge, and he is a practitioner of Raja Yoga lifestyle. He is invited as a speaker at different spiritual scientific discourses including Zindagi Bane Aasan, Muskan aired on PMTV channel. He is the recipient of many national and international awards, including World Federation of Neurology Fellowship Award, ILAE Bursre Award, San Servoldo Bursre Award, Saroja Ja Best Paper National Award. He has trained more than 500 medical personnel at Asha Kiran, Home for Mental Retarded under Ministry of Social Justice, GNCT Delhi. Is award speaker at both national and international forum on science behind spirituality and concept of brahmacharya. He is also invited as a speaker at reputed College of Delhi University. Recently, he conducted a scientific seminar on real motivation for student at Deshbandhu College University of Delhi and one day seminar on the theme Think and Grow Rich. He also regularly publishes videos on YouTube on the topic Brain Rewire to bring sanskar transformation in the youth. He has special interest in philanthropic work and provides free neurology services at Global Hospital during vacations and organizes free health camps at Trihoi District, Mount Abu. So let's have a first session. Thank you. Om Shanti.
Thank you, sister. Good morning, ladies and gentlemen.
One second. So let's welcome Dr. Swapan Gupta with a flower. Thank you, Umsha.
So beautiful morning, beautiful day. Welcome to Mount Abu. And this is Shantivan. You are sitting in the complex of Brahma Kumaris. And today we are gathered here to understand mind, body and medicine. So it's a rejuvenation from our busy schedule. Hum sab log apne life mein kitne busy hain as doctors, as nurses, as technicians, paramedical staff. So kuch do teen din apne बॉडी को भी और उससे इम्पोर्टेंट अपने सोल को रिजुविनेट करेंगे, राइट? जब हम कहते हैं कि हम डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है? पेशेंट्स. बिल्कुल ठीक बात है, पेशेंट्स. हम चाहते हैं हमारे पेशेंट्स ठीक हों, सब यही चाहते हैं ना, हम भी ठीक रहे हैं, हमारे पेशेंट्स भी ठीक रहे हैं। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, कुछ तो खास बात है। भगवान सब कुछ कर सकता है, क्या हम सब कुछ कर सकते हैं? लिमिटेशंस हैं, इंसान के लिमिटेशंस हैं। तो जहां पर हम कहते हैं कि यहां पर दवा हमारी काम नहीं करेगी, वहां क्या काम करेगा? दुआ काम करेगी। तो आज हम इसी टॉपिक पर थोड़ा बात करेंगे, जो हमने अपनी लाइफ में समझा बियॉन्ड द मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टेशन जब हम बात करते हैं, जो प्रत्यक्ष है, जो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे भी तो कुछ छिपा हुआ है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हम में से बहुत सारे लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, देखी है टाइटैनिक मूवी? टाइटैनिक का शिप जो था, जो जहाज था, वो क्यों डूबा? वो इसलिए डूबा क्योंकि वो एक आइसबर्ग जो था उससे टकरा गया। लेकिन वो टकरा क्यों गया? इतनी बड़ी उसके अंदर नेवल ऑफिसर्स थे, सब कुछ था, अलार्म सिस्टम था, सर्विलेंस था, क्यों टकरा गया? क्योंकि जितना ऊपर दिख रहा था उसके कहीं ज्यादा नीचे था वो, जिसकी वजह से वो टकरा गया। तो जो हमें दिखाई दे रहा है उसके पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, ये आज हम डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ, पैरामेडिक पीपल, हम ये सब देखेंगे, जिससे हम खुद को भी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने पेशेंट्स को बेनिफिट कर सकते हैं। तो चलें इस जर्नी में बियॉन्ड द मैनिफेस्ट, जर्नी टुवर्ड्स सोल रियलाइजेशन। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, कैन वी हैव द स्क्रीन ऑन प्लीज। Okay, thank you. So, I am Dr. Swapan Gupta. I am currently working as Associate Professor of Neurology at GB Pant Hospital, New Delhi. Let us see some real world stories. Okay. Doctors, medical staff, patients are everywhere. Okay. So, we'll start with our patients. हम आपके साथ कुछ अपने पेशेंट्स की स्टोरीज डिस्कस करेंगे, जो रियल पेशेंट्स हैं, और उसने हमारी लाइफ को कैसे चेंज किया वो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे, और हो सकता है इससे आपके अपने पेशेंट्स को भी बेहतर ट्रीटमेंट लेने में मदद मिले। तो आप देखिए, कैन वी हैव द स्क्रीन, यू सी दिस मैन, ये एक व्यक्ति हैं जिनको 3 साल से प्रॉब्लम था। उनका कंप्लेंट था कि मेरे पैर बिल्कुल चलते नहीं हैं, पावर बिल्कुल जीरो था, कमर से लेके पूरा नीचे तक सुन था हिस्सा, और ये ऐसे चलते थे। 3 साल से वो पूरे भारत के अलग अलग अस्पतालों में घूमते रहे, और फाइनली वो आए हमारे अस्पताल में। हमारे जूनियर डॉक्टर ने पेशेंट को देखा और प्रेजेंट किया, जैसे एक सभा होती है ना मीटिंग क्लास में, कि ऐसा ऐसा एक केस है जिसके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। मोस्टली अगर पैर काम नहीं करते हैं तो उस केस में हम समझते हैं कि एमआरआई में कुछ प्रॉब्लम आएगा, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन सब टेस्ट नॉर्मल थे। हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स भी थे, हमने कहा कि कुछ गड़बड़ है, जिस व्यक्ति के पांव बिल्कुल जीरो पावर है वो ऐसे चल नहीं सकता। उन्होंने कहा देखो वो तो स्टैंड के सहारे से चल रहे हैं। हमने कहा ये पॉसिबल नहीं है, आप इसको एडमिट कीजिए, हमारे अंडर एडमिट करिए। हमने एडमिट किया उसको, हमें पूरा यकीन था कि ये कुछ गड़बड़ है। तो हमने उसको कहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा नहीं कोई मानसिक प्रॉब्लम है, कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं है। कई डॉक्टर्स ने उनको लेबल किया था, तो हमने उनको कहा अच्छा ठीक है, हम आपको एक दवाई देंगे जिससे आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, वो महंगी दवाई है, और आप देखिए जो हमने दवाई दी उसके बाद ये उनकी प्रॉब्लम 7 दिन के बाद है। तो आप देख सकते हैं 7 दिन में वो व्यक्ति चलने लगा। और ऐसे ही जब हमने ये केस प्रेजेंट किया 7 दिन के बाद मीटिंग में, तो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने क्या कहा, उन्होंने कहा बड़े बड़े कैंसर्स, ट्यूमर्स, ब्रेन का आप इलाज करते हो, वो एक मिराकल बोलते हो, लेकिन ये भी मिराकल से कम नहीं है। इन्होंने जो भी दवाई दी लेकिन किसी अपाहिज को चला देना जो कोई नहीं कर पाया बहुत बड़ी बात है। ओके दूसरा पेशेंट, ये लड़की को देखिए। इस लड़की की प्रॉब्लम थी कि उसके राइट साइड ऑफ द फेस में फड़कन होती थी 6 महीने से। कई डॉक्टर्स को दिखाया, कोई फायदा नहीं। कितनी दवाइयां ले ली, टेस्ट सारे नॉर्मल। आप देख रहे हैं वो आंख नहीं खोल पाती थी, आंख में फड़कन होती थी। और ये है सेकंड वीडियो, जब उसको हमने कुछ किया, उसके साथ कुछ इलाज किया। क्या इलाज किया, पीबी क्या है वो हम आगे देखेंगे। समझ ही गए हैं कुछ लोग, आगे देखेंगे। तो आप देखिए, इसमें साउंड नहीं है, हमारे डॉक्टर टेस्ट कर रहे हैं। कैन वी हैव द साउंड आल्सो? तो वो चेक कर रहे हैं और आप देखिए लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। कितने दिन में? 4 दिन में। तो खुशी होती है ना डॉक्टर के लिए जब उसका मरीज ठीक होता है, जो कहीं से भी ठीक ना हो, तो कितनी खुशी होती है कि देखो आपने किया। लेकिन करने वाला कौन है वो आगे देखेंगे। ये लड़की को देखिए, 5 साल शादी को हुए, 5 साल से ये प्रॉब्लम, हाथ कांपता था, कोई काम नहीं कर पाती थी, ना खाना बनाना, ना कपड़े धोना, कुछ भी नहीं, बहुत परेशान थी। जिसका हाथ ऐसे ऐसे हिलता रहे 24 घंटे, वो काम कैसे करेगा। कई जगह दिखा लिया, 5 लाख खर्च कर दिया इलाज पर, कोई फायदा नहीं। हमारे पास आए, इलाज किया, 5 दिन के बाद का वीडियो देखिए। अभी हमारे डॉक्टर पूछ रहे हैं आपको कोई दिक्कत है? नहीं, अब ठीक है। वीडियो में आप देख सकते हैं, ये 5 दिन बाद का वीडियो है, हाथ बिल्कुल साइलेंट हो गया। इनको भी हमने एक मेडिसिन दी, कौन सी? पीबी। पीबी क्या है ये पीबी? हाँ, प्लेसिबो। कितने लोग देते हैं प्लेसिबो? नहीं देते, हम भूल गए हैं, क्योंकि हम दवाइयों को ज्यादा देखते हैं। लेकिन जहां पर दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। प्लेसिबो कैसे दुआ है ये आज हम देखेंगे। तो अब देखिए, इलाज कितना ग्रेटिफाइंग है मरीज के लिए, क्या प्रॉब्लम है, और अब आप देखिए बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाती है। तो ये बिल्कुल आप ठीक, आप लोगों ने ठीक कहा, ये है द प्लेसिबो इफेक्ट। और प्लेसिबो को हम कैसे समझते हैं? एक होता है दवाई खिलाना, मरीज ठीक हुआ, खुश हुआ। दूसरा है दवाई की जगह क्या देना, टॉफी देना, या फिर नॉर्मल सलाइन भी देते हैं, या फिर कुछ मल्टीविटामिन दे देते हैं। लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, ये क्या है? दवाई है जो आपको काम करेगी। तीनों ही मरीजों में हमने उनको ये तो कहा हम आपको दवाई देंगे, लेकिन उस दवाई में क्या था? मल्टीविटामिन थे। उससे बड़ी बड़ी लाखों की दवाइयां वो लेके आ चुके थे, लेकिन हमारे मल्टीविटामिन ने वो काम कर दिया जो लाखों की दवाइयां काम नहीं कर पाई। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? माइंड ओवर मैटर, प्लेसिबो इफेक्ट, द मैजिक ऑफ बिलीफ, मान्यता। मरीज को लगता है क्या मिल गया मुझे, क्या मिल गया। दवाई जहां फेल हो गई वहां पर बिलीफ ने काम कर दिया। तो प्लेसिबो इफेक्ट को साइंस कैसे डिस्क्राइब करता है, डेफिनेशन क्या देता है? प्लेसिबो इफेक्ट मेक्स अस बिलीव दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग बेनिफिट्स ऑफ रियल ट्रीटमेंट एंड एक्चुअली फील बेटर इवन दो द सब्सटेंस और ट्रीटमेंट मे बी इनएक्टिव और अ शैम। उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मरीज को लगता है इसमें बहुत कुछ है और उसे वो फील बेटर फील करता है। ठीक बात है, यही है प्लेसिबो की डेफिनेशन। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, आंखों पे पट्टी बांधी है, एक्यूपंक्चर दे रहे हैं, एक में एक्यूपंक्चर नीडल एक्चुअली में पोक किया गया और दूसरे में जो दांत से निकालते हैं ना टूथपिक वो यूज किया गया और दोनों का इफेक्ट सेम आया। इट वर्क्स, साइकोलॉजी। हाँ, माय क्वेश्चन इज, हम कहते हैं प्लेसिबो इनएक्टिव है, इज इट रियली इनएक्टिव? अगर कोई चीज इनएक्टिव है तो उसका इतना बड़ा इफेक्ट कैसे आ रहा है? हमने तो बोल दिया कि आपने कुछ दिया नहीं है, मरीज ने बस सोचा हो गया। मरीज ने सोचा और हो गया, आपने कुछ नहीं दिया, इनएक्टिव है वो चीज। इनएक्टिव का एक्टिव कैसे हो सकता है इफेक्ट? ये तो हमारा लॉ कहता है, हमारा साइंटिफिक लॉ कहता है कि जो आप दोगे उसी का रिजल्ट आएगा। एज यू सो सो शैल यू रीप। तो आपने इनएक्टिव कंपाउंड दिया, उससे इतना बड़ा एक्शन कैसे आ गया? सोचने वाली बात है। विच यू हैव बीन निग्लेक्टिंग, हमने उस चीज को बस ऐसे, हमने हर चीज को एक मैटर पर ले लिया कि हाँ ये एक्टिव जो दिख रहा है वही एक्टिव है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो भी एक्टिव हो सकता है और उससे ज्यादा एक्टिव हो सकता है जो हमें नहीं दिख रहा है। कैसे? एक्चुअली में जो आपने दिया, जो हमने दिया, वो केवल सिर्फ एक मल्टीविटामिन की गोली नहीं दी, हमने साथ में और कौन सी गोलियां दी? लक, होप, लव, पावर, जॉय, हैप्पीनेस की गोलियां दी। मरीजों में हमने दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए। एक मरीज को हमने कहा कि मैं आपको अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा, लेकिन आप ना ये आप अपने जो एक्टिंग कर रहे हो ना, ये जो आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये आपको ठीक नहीं होने देगी, ये होने ही नहीं देगी ठीक। आप जब तक एक्टिंग नहीं छोड़ोगे आप ठीक नहीं हो सकते। हम कहते हैं ना मरीज को, हम समझ जाते हैं, डायग्नोसिस करना मुश्किल नहीं है डॉक्टर के लिए, डायग्नोसिस तो कर लेते हैं। हम कहते हैं ये एक्टिंग कर रहे हो, ये नहीं, आप ना क्या प्रॉब्लम है आपको? अच्छा साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, आप नहीं ठीक हो सकते अगर जब तक मन ठीक नहीं करोगे, ऐसे ही कहते हैं ना। मरीज ठीक नहीं हुआ हमारा, हमने थोड़ी सी तरीका चेंज कर दिया। क्या? अब हमने बहुत प्यार से उसको कहा, नहीं आप तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये दवाई से बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी बीमारी कुछ भी नहीं है, देखो आप कितने अच्छे हो। आप उसको लव की एनर्जी दी, उसको हैप्पीनेस की एनर्जी दी, तब ये काम किया। और एक्चुअली में प्लेसिबो केवल एक मन का भ्रम नहीं है, इससे देखा गया है कि जब प्लेसिबो देते हैं तो ब्रेन में एक्चुअली में केमिकल चेंजेस होते हैं, लाइक एंडोजिनस ऑपियोइड्स, कोलेसिस्टोकाइनिन, अदर हार्मोन, सेरोटोनिन, ये सब रिलीज होते हैं। ये सारे गुड हार्मोन्स हैं जो हमारी रिकवरी में हेल्प करते हैं। ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी, ये प्रॉब्लम्स का जड़ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, इनका जड़ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। तो हमें साइकोलॉजी को ठीक करना है। प्लेसिबो इफेक्ट स्टडीज ने देखा, आप देखिए ये एमआरआई, हम सब जानते हैं ब्रेन का एमआरआई है। जब हम किसी को प्लेसिबो देते हैं, हम उसको कहते हैं कि आप इससे ठीक हो जाओगे, तो उसके ब्रेन में कैसे रियल चेंजेस होते हैं? रोस्ट्रल एंटीरियर सिंगुलेट, इंसुला, डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इन सब में रियल चेंजेस होते हैं ब्रेन में। तो ये जो हमारी थेरेपी है ना, दवा के साथ अच्छे से मरीज को ट्रीट करना, उसको एक होप देना, लव देना, वो भी काम करता है, एक्चुअली में रिकवरी में हेल्प करता है। हम अपने बिजी शेड्यूल में उसको भूल जाते हैं, दवाई लो हाँ ठीक हो जाओगे बस, लेकिन अच्छा डॉक्टर वो है जो दवा के साथ उसको होप भी देता है, प्यार भी देता है। नोसीबो इफेक्ट, प्लेसिबो तो मोस्टली लोगों को पता है, नोसीबो कौन बताएगा? नोसीबो क्या होता है? नोसीबो क्या होता है? Anybody can stand up and say, we are a group of same community. नोसीबो कौन बताएगा? ओके, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी ट्रेंड आ गया है कि आपको मरीज को साइड इफेक्ट बताने हैं, ओके। एज अ न्यूरोलॉजिस्ट मैं मरीज को एंटी एपिलेप्टिक्स, जो दौरे के सीजर मेडिकेशन होती हैं, वो हम उनको प्रेस्क्राइब करते हैं। अब रूल है कि भाई आपको सारे साइड इफेक्ट्स बताने हैं, और ये मेरी भी और आप सबकी भी ऑब्जर्वेशन होगी, जितना उनको बताओ इससे ये होगा, उनको वो हो जाता है ना। अब हम फंस जाते हैं इस डायलेमा में ना बताएं तो सरकार हम पर, और बताएं तो मरीज को वो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा कैसे, कितनी बड़ी साइंस है, सिर्फ बताने से उसको साइड इफेक्ट कैसे एक्सपीरियंस होने लग गए। आप देखो ये कार्टून बहुत अच्छा कार्टून है, ये गर्ल है और ये एक बॉय। ये बॉय अपने फ्रेंड के घर आता है और वहां पर एक बास्केट देखता है और कहता है, ओ नो आई एम एलर्जिक टू डॉग हेयर, माई आईज विल टीयर अप एंड माई फेस विल स्वेल। मैं जब भी कोई डॉग का हेयर होता है तो मुझे उससे एलर्जी होती है और मेरे चेहरे पर सूजन आ जाती है, मुझे उससे प्रॉब्लम होता है। तो वो कहती है ओके, और उसके चेहरे पर आप देखो एलर्जी मैनिफेस्टेशंस हो गए, ओके, क्योंकि वहां पर शायद डॉग का हेयर था बास्केट में। लेकिन वो क्या कहती है, डियर आई डोंट हैव अ डॉग, आई हैव अ पिग। तो वो कहता है ओ वेल, और वो ठीक हो जाता है। है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, एंड दिस इज ट्रू। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा मैनिफेस्टेशन भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइकोसोमैटिज्म। एंड यू सी ये रियल पिक्चर है, ही इज जॉन मैरी शार्को। आप सब लोगों ने सुना होगा बेबिंस्की साइन, थोड़ा बहुत न्यूरोलॉजी। बेबिंस्की साइन हमें MBBS में सिखाया जाता था ना, जो फुट पे हम की से चाबी से चलाते हैं बेबिंस्की। ये बेबिंस्की के टीचर थे शार्को, जीन मैरी शार्को। तो इन्होंने बेबिंस्की को, मालूम है आपने, बेबिंस्की ने ये प्लांटर रिफ्लेक्स जो था, जब सोल पे हम चाबी चला के चेक करते हैं, ये कैसे डिस्कवर किया बेबिंस्की ने, शार्को ने बेबिंस्की जो उनके स्टूडेंट थे उसको बोला कि आप ये कुछ ऐसी फीमेल्स जो हिस्टीरिया, जो सिर्फ बेहोश हो जाती थी, उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, उनकी आप मैपिंग करो, सेंसरी मैपिंग, मतलब जगह जगह आप उनको चेक करो कि कहां कहां पे उनको सेंसेशन नहीं आती है, ओके? तो उन्होंने देखा कि जो रियल के पैराप्लीजिक या फिर जिनको पैरालिसिस था और जो सिर्फ मेलिंगरिंग कर रहे थे, जो फेंट फेनिंग कर रहे थे, जो सिर्फ एक उसका एक्ट आउट कर रहे थे, उन्होंने जब फुट को स्ट्रोक किया तो देखा कि उनका थंब जो ग्रेट टो था वो ऊपर गया और जिनका फंक्शनल प्रॉब्लम था वो वहीं रहा, नीचे ही रहा। तब बेबिंस्की ने ये साइन निकाला था। तो आप समझते हैं साइंस कैसे डिस्कवर हुई। तो ये जॉन मैरी शार्को पढ़ा रहे हैं एक लेडी के ऊपर अपने स्टूडेंट्स को कि क्या हिस्टीरिया होता है। और आप देखिए ये प्रॉब्लम, ये उस समय उन्होंने 150 साल पहले बताया था और आज भी ऐसी समस्या हम देखते हैं। ये पेशेंट है जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेबल कर दिया जाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, दौरे, मिर्गी आती है अगेन। बट इन पेशेंट्स को मिर्गी नहीं है, साइकोसोमैटिक, मानसिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से सोमैटिक मेडिकल प्रॉब्लम्स जैसे वो मैनिफेस्ट करते हैं। आजकल आप अलग अलग स्ट्रीम्स से होंगे, कोई कार्डियोलॉजी, कोई गैस्ट्रो, कोई गायनेकोलॉजिस्ट, कोई मेडिसिन, कोई सर्जन, लेकिन हम ऐसे बहुत पेशेंट्स देखते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, लेकिन टेस्ट करते हैं तो कुछ नहीं निकलता। फॉर एग्जाम्पल IBS, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, पेट खराब है, खट्टी डकारें आती हैं, बहुत दर्द रहता है, टेस्ट किया, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, CT, MRI, सब कुछ, सब नॉर्मल है। हम क्या कहते हैं, आपको इरिटेबल बावल सिंड्रोम है, प्रॉब्लम यहां है। पैनिक अटैक्स, कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है, हमारी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो वो कहां पहुंच जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, पेट में एकदम गैस बननी शुरू हो जाती है, कहां पहुंच जाते हैं, गैस्ट्रो के पास। सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, कहां पहुंचते हैं, न्यूरो के पास। अब वो बेचारे डॉक्टर्स हम परेशान हो जाते हैं, टेस्ट में तो कुछ आ नहीं रहा है, क्या करें, डॉक्टर बताया है वो प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम तो है आप समझ नहीं रहे हो, होता है ना। तो हम कहते हैं आपको साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स हैं और ये बढ़ती जा रही है। तो ये थॉट्स कैसे हमारे मेडिकल प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है, ये हमने देखा। और हम एज डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशनल्स जब तक हम इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम ठीक कैसे करेंगे? ठीक करने का तरीका जो अभी तक देखते आए, हम क्या यूज करते आए? सबसे पहला क्या होता है? अच्छा, साइकोसोमेटिक है। फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी राइट इज, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं? साइकियाट्री कंसल्टेशन। फिर मरीज आता है 2 महीने बाद, सर उन्होंने इतनी हैवी डोज दी, मुझे तो नींद ही आती रहती है। नहीं नहीं आप मन से सोचना छोड़ दो ना। अरे सर नहीं होता। आप क्यों सोचते हो? कभी हमने अपने से ये सवाल किया है कि हम छोड़ पाए अपने मन से सोचना? क्या हम छोड़ पाए अपने नेगेटिव मन से सोचना? मरीज को इतनी आसानी से कह देते हैं। आज हम समझेंगे। तो नसीबो में भी, नसीबो इफेक्ट में भी, जो हम सोचते हैं वो हमारे ब्रेन में केमिकल्स का रिएक्शन होता है और वैसा फिर हम फील करते हैं, वैसे मैनिफेस्टेशंस आते हैं। ये रियल साइंस है। थॉट्स सिर्फ अपनी बॉडी पर ही नहीं, नेचर पर भी असर कर सकती है, नेचर पर भी असर कर सकती है। थॉट से हमारी बॉडी पर असर तो हमने देख लिया, लेकिन आपको ये मालूम है कि जो आप सोच रहे हो वो पूरे आसपास के आपके एनवायरमेंट पर भी असर डाल रही है। आपके एनवायरमेंट पर भी असर डाल रही है। इनफैक्ट पूरे ब्रह्मांड में आपके वाइब्रेशंस फैल रहे हैं जो आप सोच रहे हो। साइंटिफिकली क्या सही है, देखते हैं। डॉक्टर मसारू इमोटो जापान के, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, आप लोग जानते भी होंगे। इन्होंने वाटर कॉन्शियसनेस पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक ही वाटर लिया, उनको 3 जगह डिवाइड कर दिया और कुछ दिनों तक अलग अलग वाइब्रेशन दिए। जैसे एक वाटर को उन्होंने वाइब्रेशन दिया थैंक यू का, एक वाटर को इविल नेगेटिव वाइब्रेशन दिया, मतलब नेगेटिव थिंकिंग, सिर्फ थिंकिंग कि आप तो बेकार वाटर हो, आप अच्छे नहीं हो, आप खराब वाटर हो, और एक को प्रेयर कि आप तो हमें जीवन दान, जीवन शक्ति देते हो, आप नहीं होते तो क्या होता, तो प्रेयर का। और आप देखिए ये उसका मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम सब जानते हैं कि कितना ऑर्गेनाइज्ड है। ये पूरा डिसऑर्गेनाइज हो गया और प्रेयर वाला कितना ब्यूटीफुल, कितना कॉम्प्लेक्स, और एक इसकी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ही कितनी अमेजिंग है, राइट? तो हमारे सिर्फ थॉट से उन्होंने प्रूव किया कि वाटर जैसी चीज पर भी असर आता है। तो इससे एक प्रूव होता है कि हमारे थॉट्स बाहर की चीजों पर भी असर डालते हैं, और थॉट्स को हम कितना कैजुअली बस करते रहते हैं ये हम सब जानते हैं, राइट? अमेजिंग स्टोरी ऑफ अमेजॉन जंगल। अमेजॉन जंगल है साउथ अमेरिका में। आपको मालूम है वहां पर आदिवासी क्या करते हैं? जब उनको कोई पेड़ गिराना होता है ना, जब पेड़ कोई गिराना होता है तो वो उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं और 1 महीने तक उसे खूब गालियां देते हैं, अब्यूज करते हैं। आप लोग जानते होंगे बहुत लोग, और आप जानकर हैरानी होगी, 1 महीने बाद वो पेड़ खुद ब खुद सूख के गिर जाता है। दैट इज द पावर ऑफ थॉट, दैट इज द पावर ऑफ थॉट। थॉट वाइब्रेशंस बन के, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, हम मोबाइल से कहते हैं, पहले मोबाइल हमें पता नहीं था, लेकिन अब हमें पता है कि मोबाइल से रेडिएशंस होते हैं, तो हम हार्ट के पास नहीं रखते, हेड के पास नहीं रखते, दूर रखते हैं, है वह रेडिएशन है, दिखाई तो नहीं देता। थॉट्स उससे भी पावरफुल रेडिएशन निकालता है, वेव्स निकालता है, जो पूरे हर जगह फैलते हैं। थॉट्स आर ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस। अच्छा, दवा काम नहीं कर रही हमारी, अब परिवार वालों को हम क्या कहते हैं, आप दुआ करो, दुआ से ठीक होगा। हम कह तो देते हैं, हमने अपने सीनियर डॉक्टर से सुना, जहां दवा नहीं काम कर रही दुआ करो ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या हमने कभी उसको फील किया है? दुआ से कैसे ठीक होगा? हम सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, रियल में काम करता है? एक्चुअली में ये काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्लेसिंग्स से बंजर जमीन भी हरी भरी हो जाती है, और जहां पर बददुआ है वहां पर हरी भरी जमीन भी बंजर हो जाती है। तो थॉट्स वो वेव्स की तरह स्प्रेड करते हैं पूरे ब्रह्मांड में। अब जैसे आपने एक पॉन्ड में, एक तालाब में पत्थर डाला, जितना वो बड़ा पत्थर होगा उतनी दूर तक उसकी वेव जाएंगी। ऐसे ही जितना आपका थॉट पावरफुल होगा, फोकस्ड होगा, उसका इफेक्ट उतना दूर जाएगा। आज के समय में हमारे थॉट्स क्यों एक्टिव नहीं है, पावरफुल नहीं है, क्योंकि वो थॉट्स डिफ्यूज हैं। डिफ्यूज मतलब वो फोकस नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। अभी ये सोच रहे हैं, नेक्स्ट दूसरा थॉट आ गया, अभी अच्छा सोच रहे हैं, फिर उसका एक फियर फैक्टर आ गया, उसमें संशय आ गया, उसमें एक सस्पिशन आ गया, तो वो स्ट्रांग नहीं हो पाता। दवाई भी अगर मरीज लेता है, अगर उसको विश्वास नहीं होता है तो क्या काम करती है? नहीं। तो फेथ इटसेल्फ इज अ पावर इन इटसेल्फ। अब आप कहेंगे कि सर थॉट्स आपने बताया तो सही, लेकिन इसका मेडिकल एविडेंस क्या है, हम कैसे माने थॉट्स ट्रैवल करते हैं? तो आप देखिए, स्टडी हुई ऑरा के ऊपर। ऑरा, हम किसी के साथ बैठते हैं, कहते हैं कि उससे मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। वाइब्स हैं क्या? वो जैसा सोच रहा है उसकी वाइब्रेशन आ रही हैं और वो हम फील कर रहे हैं। इसका मेजरमेंट भी हुआ, अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट्स इमोशंस से अलग अलग कलर ये गामा कैमरा से कैप्चर किए गए, और आप देखिए ये उनका ऑरा बना। जहां जहां से कट था इसका मतलब वहां वहां से उनकी वो एनर्जी डेफिशिएंट थी। तो ये डायरेक्ट प्रूव करता है कि कैसे हमारे थॉट्स बाहर रेडिएट करते हैं। तो आज से हम क्या सीखेंगे कि अभी सिर्फ हम वर्ड्स और एक्शन पे ध्यान नहीं देंगे, हमारे थॉट्स भी रेडिएट कर रहे हैं और वो इफेक्ट डाल रहे हैं। इनफैक्ट एक्चुअली में दूसरे के पास थॉट्स पहले पहुंच जाते हैं, वर्ड्स बाद में पहुंचते हैं। इसीलिए कोई हमसे बात करता है, हम कहते हैं कि ये सामने से तो अच्छा अच्छा बोल रहा है लेकिन इसके मन में अच्छा ही नहीं है, क्योंकि हम वो पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं। और हमारे जो लव्ड वांस होते हैं, वेल विशर्स होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स, जो हमारे अच्छे कलीग्स हैं, वो डांट भी लेते ना, तो हम क्या कहते हैं कि ये इनकी गुड विशेज हैं हमारे लिए। हम सब जानते हैं, हाँ हाँ कर रहे हैं, लेकिन इनको हमें यूज करना है कैसे, वो हम देखते हैं। अब थोड़ा सा इससे नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे। अभी तक हम मेडिकल साइंस में ह्यूमन बॉडी को सब कुछ मानते आए, ये बॉडी ही सब कुछ है। बॉडी को ठीक करो, मेडिसिन दो, केमिकल्स ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ट्यूमर है, ट्यूमर निकाल दो, सब ठीक हो जाएगा। हमने आज देखा कि थिंकिंग, थॉट की पावर क्या है, वो मेडिसिन से ऊपर के लेवल पर काम करती है। लेकिन ये थॉट क्रिएट करने वाला कौन है? हु इज द थिंकर? हु इज द थिंकर? मैं, मन सोचता है ना, मन, ऑफ कोर्स माइंड, बट कैन इट थिंक विदाउट कॉन्शियसनेस? अगर कॉन्शियसनेस नहीं है, चैतन्यता जिसको हम कहते हैं, लाइवलीनेस कहते हैं, क्या वो सोच सकता है? ये टेबल सोच सकती है? ये चेयर सोच सकती है? ये माइक सोच सकता है? नहीं। हम सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं क्योंकि हमारे पास लाइवलीनेस है और हमारा मन सोचता है। तो मैं सोचता हूं या मन सोचता है, आगे देखते हैं। ये जो कॉन्शियसनेस है, जो हम लाइवलीनेस है, इसी को स्पिरिचुअल वर्ल्ड ने सोल कह दिया। ओके? जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करती है। कितने लोग आत्मा को मानते हैं कि सोल होती है? हैंड रेस करें। वेरी नाइस। डॉक्टर कम्युनिटी और सोल को मानती है तो बहुत अच्छी बात है। हम नहीं मानते थे क्योंकि हमने कब कहा कि पोस्टमार्टम करके दिखाइए सोल कहाँ है, तो किसी ने दिखाया नहीं। लेकिन जब हमने खुद इस चीज को समझा तब हमें समझ में आया कि एक्चुअली में जो चैतन्यता है, कॉन्शियसनेस है, उसी को वो सोल कह रहे हैं। लेकिन वो चैतन्यता क्या है, वो कैसे काम करती है, उसका रिलेशनशिप माइंड के साथ, ब्रेन के साथ, बॉडी के साथ क्या है, वो हमारा और अंदर से कॉन्टेम्पलेशन चला कि हम जाने और क्या है, और वही हम आपके साथ अब शेयर करेंगे। एक्चुअली में ब्रेन वो एक फिजिकल पार्ट है, वो मशीनरी है जिसके थ्रू वो चैतन्यता काम कर रही है। ओके? ये लाइट चल रही है ना, लाइट क्यों चल रही है? क्योंकि इसमें करंट गया, लेकिन करंट जाने के लिए उसको एक मीडियम चाहिए। किसका मीडियम चाहिए? वायर का। वायर में जब करंट होता है तो हम कहते हैं लाइव वायर है, और जब करंट नहीं होता तो हम क्या कहते हैं? डेड वायर है। तो ब्रेन तो एक फिजिकल एस्पेक्ट है, वो एक वायर है। करंट क्या है उसके अंदर? वो लाइवलीनेस, जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड ने क्या कह दिया? सोल। सिंपल है। इन अदर वर्ड्स, कॉन्शियसनेस, लाइट जल रही है करंट की वजह से, तार की वजह से नहीं। लेकिन जिसको नहीं पता, एक बच्चा क्या कहेगा? देखो तार की वजह से लाइट वहां जा रही है। ऐसे ही कॉन्शियसनेस जो चैतन्यता है वो मैनिफेस्ट करती है खुद को थ्रू दिस बॉडी, थ्रू द फैकल्टी ऑफ माइंड। मतलब मन के द्वारा ये चैतन्यता, ये लाइवलीनेस, ये कॉन्शियसनेस बॉडी का माध्यम यूज करके अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। और डिटेल में देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। समझ में आया यहां तक सबको? कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं? ओके। अच्छा, जब हम चैतन्यता की बात करते हैं, अब लोग कहते हैं कि अच्छा चैतन्यता लिविंगनेस है ना। लिविंगनेस तो प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है। तो सब में जो चैतन्यता है वो एक ही चैतन्यता है, कॉन्शियसनेस है एक ही है वो, या अलग अलग है? जो कहते हैं एक ही है, हाथ खड़ा करेंगे। कॉन्शियसनेस सब में एक ही है, चैतन्यता। लंबा हाथ दिख नहीं रहा है, अच्छे से लंबा हाथ। ओके। जो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस सबकी अलग अलग है, चैतन्यता सबकी अलग अलग है। ओके। तो 50-50% है। कुछ कहते हैं 50% कहते हैं कि कॉन्शियसनेस सबकी एक ही है, कॉन्शियसनेस सबकी अलग अलग है, वो भी 50% है। अब देखते हैं क्या है कॉन्शियसनेस। एक्चुअली सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ जिंदा होना वो कॉन्शियसनेस नहीं है। चेयर और मुझ में सिर्फ इतना ही फर्क नहीं है कि मैं जिंदा हूं और ये डेड है, एक और भी फर्क है। उसके दो पार्ट्स हैं। पहला तो अराउजल सिस्टम, कि हम अराउज हो सकते हैं, हम अवेयर हैं, हमें पता है आसपास क्या हो रहा है और हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा है वो है कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, द इंटेलेक्ट एंड द इम्प्रेशंस। ह्यूमन बींग्स की हम कहते हैं कॉन्शियसनेस हायर होती है, वी आर हायर कॉन्शियस बींग्स, ऐसे ही कहते हैं ना। एनिमल्स की लोअर कॉन्शियसनेस है, तो इसलिए कॉन्शियसनेस सबकी एक जैसी नहीं कह सकते। कॉन्शियसनेस सिर्फ लाइवलीनेस नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस का खुद का एक कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर जो है वो माइंड और बॉडी के थ्रू वो मैनिफेस्ट करता है। पीछे हमने देखा ना कि चैतन्यता खुद को मैनिफेस्ट कर रही है थ्रू द फैकल्टी ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो जैसा उसका कंटेंट होगा, बुद्धि मानी सबकी हमारी अलग अलग है ना, अलग अलग हमारी क्वालिटी, संस्कार, प्यार का, गुस्से का, शांति का, क्रोध का, प्योरिटी का, इम्प्योरिटी का, ईगो का, कॉन्फिडेंस का, सबका अलग अलग है। अलग अलग संस्कार जो हैं, ये किसमें होते हैं? कॉन्शियसनेस में होते हैं। बॉडी सिर्फ उसको मैनिफेस्ट करता है। कॉन्शियसनेस, आत्मा, जिसको सोल वर्ल्ड या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड ने कहा आत्मा। आत्मा कहाँ है? हमारे लिए समझना बहुत आसान है कि जब कॉन्शियसनेस काम कर रहा है ब्रेन और माइंड के थ्रू, तो ब्रेन और माइंड तो यहां हेड में है, तो कॉन्शियसनेस को भी यही होना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है। ये न्यूरॉन्स हमने दिखाए, ये फिजिकल एस्पेक्ट है। माइंड जो है, मन जो है, जिसमें थॉट्स आते हैं, वो एक एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमें पता है कि वो इमोशंस होते हैं। लेकिन उसको भी किसने दिए? ये वो चैतन्यता ने दिए। इसमें भी ये साइनाप्सिस दिखाए हैं, ये सारा फिजिकल एस्पेक्ट है। और ये जो लाइटिंग अप है, जब थॉट्स ब्रेन में पैदा होते हैं ना, तो थॉट्स जब ट्रैवल करते हैं न्यूरॉन्स में, एक से दूसरे न्यूरॉन में, तो करंट के थ्रू ट्रैवल करते हैं। और ये करंट जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट है। किसका? वो थॉट्स जो एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो थॉट्स अगर मेडिकल लैंग्वेज में देखा जाए तो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिकल करंट है. ओके, तो चैतन्यता, कॉन्शियसनेस, आत्मा, क्या ये ब्रेन पे डिपेंड करती है? मतलब अगर ब्रेन नहीं है तो चैतन्यता नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं? जो लोग कहते हैं कि अगर ब्रेन खत्म हो जाए तो चैतन्यता भी खत्म है, ब्रेन डेड हो गया तो कॉन्शियसनेस खत्म हो गई, फिनिश. हाथ खड़ा करेंगे, लंबा हाथ दिखाई देना चाहिए. ब्रेन डेड है तो कॉन्शियसनेस फिनिश, फिनिश. और जो कहते हैं कि नहीं कॉन्शियसनेस फिनिश नहीं हुई, ब्रेन डेड हुआ है, हाथ खड़ा कीजिए. अगेन अ डिवाइड. रादर कॉन्शियसनेस होती है और ब्रेन डेड हो जाता है, वो लोग ज्यादा हैं. लेकिन हम तो कहते हैं ना कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया. अब कॉन्शियस अन का क्या मतलब है? जो नहीं है. तो अनकॉन्शियस हो गया मरने से पहले भी कह देते हैं, और ब्रेन डेड हो गया फिर तो बिल्कुल ही कहते हैं कि टोटली अनकॉन्शियस है. तो अन लग गया वो तो कॉन्शियस है ही नहीं उसमें, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस है और ब्रेन डेड है? हाँ, कोई भी खड़ा होकर बता सकता है कैसे कह रहे हैं? अगर ब्रेन डेड हो गया वो तो अनकॉन्शियस स्टेट है, तो उसमें कॉन्शियसनेस कहां से रही? हार्ट बीट आपको मालूम है ब्रेन मास्टर ऑर्गन है, हार्ट नहीं. ब्रेन डेड हो जाए हार्ट चल नहीं सकता विदाउट मशीन्स, वो तो मशीन के सपोर्ट से आप चला रहे हो, वो तो मैकेनिकली चला रहे हो. अगर आप मशीन को हटा दो तो बिना ब्रेन के हार्ट चल ही नहीं सकता. इसीलिए ब्रेन डेड अगर हो जाता है तो उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं और ऑर्गन डोनेट कर सकते हो. हार्ट अगर रुक भी जाए और ब्रेन चल रहा है तो आप डेड नहीं बोल सकते उसको. तो ब्रेन तो मास्टर ऑर्गन है, ये तो मानना पड़ेगा आपको. न्यूरो तो ऊपर है ही है, ऊपर ही है. तो ब्रेन तो मास्टर ऑर्गन है, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है. लेकिन अगर ब्रेन डेड हो जाए तो कॉन्शियसनेस रह सकती है. अच्छा, अभी कौन चेंज करना चाहता है? ब्रेन डेड है, कॉन्शियस डेड है, हाथ खड़ा करो. ब्रेन डेड, कॉन्शियसनेस गई. और अभी भी लोग कितने कहते हैं कि ब्रेन डेड हो गया फिर भी कॉन्शियसनेस है. अच्छा, चेंज नहीं होंगे हम चेंज नहीं होंगे. लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ओके, देखते हैं. तो कैन देयर बी कॉन्शियसनेस विदाउट द ब्रेन? कॉन्शियसनेस इंडिपेंडेंट है ब्रेन के. कैसे? अगर वो ब्रेन के साथ खत्म हो जाती तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकती थी, लेकिन कॉन्शियसनेस ट्रांसफर हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड प्रोडिजी, गूगल बॉय कुछ साल पहले चला था, ये गूगल बॉय था जिसको बहुत जानकारी थी, बहुत कुछ था. तो वो कॉन्शियसनेस जो हमने कॉन्टेंट ऑफ कॉन्शियसनेस देखा, वो इंटेलेक्ट, वो मेमोरी, वो कहां से आई? हम कहते हैं पूर्व जन्म की. तो इसका मतलब पिछले जन्म का ब्रेन तो खत्म हो गया लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर हो गई. तो कॉन्शियसनेस इंडिपेंडेंट है. आप देखिए, ये गर्ल बहुत अच्छा पियानो, अनान सेलेस्टे, फिजिक्स बायोलॉजी की बहुत छोटी उम्र में इनको नॉलेज थी. कॉन्राड टाओ 13 ईयर ओल्ड, और सैन फ्रांसिस्को सिम्फनी, बहुत बड़ा शो होता है उसमें उन्होंने प्ले किया पियानो. जैनेट विनायक मुकुंदन के साथ प्रैक्टिस करती थी. मार्ला ऑनस्टेड, 4 साल में उन्होंने अपने पेंटिंग शुरू की फादर के साथ. तो ये सब शो करता है कि कॉन्शियसनेस जो था वो पिछला उनका ट्रांसफर हो गया था इस ब्रेन या बॉडी में. पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अगर कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती ब्रेन के साथ ही तो आप पीछे वाली कॉन्शियसनेस में कैसे जा सकते थे? जो मेमोरी पिछले साथ लाइफ की है, पिछले ब्रेन की है, वो कहां से आती? तो हम जानते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, इट इज रियल, लोग जाते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पास्ट लाइफ मेमोरीज, रीबर्थ. ये नेवल ऑफिसर हैं जिनको, जिन्होंने बताया कि मैं पिछले जन्म में ऐसा था, ऐसा था. अगर वो कॉन्शियसनेस उसके बाद खत्म हो जाती तो वो मेमोरी कहां से आती उनको? तो कॉन्शियसनेस के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, जैसे पेनड्राइव में सब कुछ भरा हुआ है, बस उसको लैपटॉप में लगाओ तो वो मूवी चल पड़ती है, वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है जो पेनड्राइव में भरा हुआ है. ऐसी कॉन्शियसनेस, आत्मा जिसको यहां पर कहते हैं, उसमें सब कुछ भरा हुआ है, बॉडी में फिट किया उस आत्मा को और सब कुछ ऑटोमेटिकली प्ले होने लगा। क्लियर है ना? हाउ इजी। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हम कौन हैं? जो अभी कह रहे थे, हम, मैं सोचता हूं, मैं मन नहीं हूं, मेरा मन होता है। वी आर द कॉन्शियसनेस, वो हम चैतन्यता है, द लाइवलीनेस, द लिविंग एसेंस और द सोल। मेडिकल प्रोफेशन में आई प्रेफर टू यूज द टर्म कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि सोल थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। हम कहते हैं आत्मा, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए छोड़ देते हैं। हम कॉन्शियसनेस हैं, एक्टिंग आउट इन दिस वर्ल्ड थ्रू द फैकल्टी ऑफ माइंड थॉट्स वाया द मीडिया ऑफ दिस फिजिकल बॉडी। अब जो तार का एग्जाम्पल लें, करंट है लेकिन अगर वायर नहीं है तो क्या लाइट जल सकती है? करंट कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही कॉन्शियसनेस में सब कुछ है, लेकिन जब तक उसको बॉडी का मीडियम नहीं मिलेगा वो कुछ नहीं कर सकती। ट्रांसफरेबल है, वो इंडिपेंडेंट है बॉडी से, ब्रेन से। तो हमें अपनी मिस्टेक, जो अभी तक हम सोचते आए, ये बॉडी कॉन्शियसनेस बिलीफ, ये हमारी मान्यता थी। मान्यता सही भी हो सकती है, बिलीफ फॉल्स भी हो सकता है, करेक्ट भी हो सकता है, लेकिन फैक्ट, सत्य जिसको कहते हैं, वो ट्रूथ ही होता है, वो गलत नहीं हो सकता। तो हम सोल कॉन्शियस फैक्ट में चले जाएं कि मैं एक चैतन्यता हूं जो इस बॉडी के थ्रू कार्य कर रही हूं। एक्चुअली मैं, ये बॉडी तो पेरिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस रहेगी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कैसे? ये हम आगे और देखेंगे। इस सोल रियलाइजेशन, जब हम रियलाइज करते हैं कि मैं ये बॉडी नहीं सोल हूं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे हाईएस्ट इंप्रेशंस हैं, जो हमारे संस्कार हैं, सोल के जो संस्कार हैं, उनको हम यूज करते हैं अपने और दूसरों के बेनिफिट के लिए। कैसे? देखते हैं। वो हाईएस्ट इंप्रेशंस क्या हैं सोल के? लव, हैप्पीनेस, पीस, पावर, नॉलेज, ब्लिस एंड प्योरिटी। ये आप अगले 2-3 दिन में ये सेशंस में और डिटेल में जानेंगे। अब देखते हैं कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। आपको ये व्यक्ति याद है? याद है सबको ये व्यक्ति? कौन है ये? पैराप्लीजिक, जिसके पांव बिल्कुल नहीं चल रहे थे। इसकी क्या प्रॉब्लम थी मालूम है? जब हमने बाद में इससे पूछा तो इसने बताया कि इसको इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा हुआ। ये फार्मर था और इसके बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, बट कुछ कारण हुआ, उस समय शायद बारिश नहीं हुई, कुछ भी, जो भी कारण बना, बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ और उसको बहुत खराब लगा। बॉडी कॉन्शियस में था तो बॉडी से रिलेटेड जो चीजें थी, अब पैसा चला गया तो उसके बॉडी उस चीज को झेल नहीं पाई, मतलब उसके लिए एक बड़ा सेटबैक था। ठीक है, वो कैसे मैनिफेस्ट किया? अब वो कुछ कर नहीं पा रहा था अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उसने ये रोल एज्यूम कर लिया कि मैं पैराप्लीजिक हूं। ये तो उसकी बात हुई। अब वो अलग अलग डॉक्टर्स के पास गया। डॉक्टर्स ने उसको क्या बोला? डायग्नोसिस उन्होंने भी बनाया कि साइकोजेनिक, हमारा फेवरेट वर्ड है ना, साइकोजेनिक है, साइकोजेनिक बना दिया। तुम एक्टिंग करते हो, क्या तुम कर रहे हो, कुछ नहीं है तुम्हें, कुछ नहीं है तुम्हें। जो उसका मन डाउन था वो और डाउन हो गया, वो ठीक नहीं होगा। क्यों? इस कॉन्सेप्ट की वजह से। अगेन एक और प्रिंसिपल है, इसको हम कहते हैं रूमिनेशन। ये प्रिंसिपल दिया था डॉक्टर डियागो पिज़ागली ने, जो डायरेक्टर हैं हार्वर्ड में सेंटर फॉर डिप्रेशन एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस रिसर्च के। क्या कॉन्सेप्ट दिया? अमिगडाला, अमिगडाला हमारा इमोशनल सेंटर होता है ब्रेन में, आप लोगों ने एमबीबीएस में पढ़ा होगा, इमोशनल सेंटर। और प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स जो आगे होता है प्री फ्रॉन्टल, वो होता है इंटेलेक्चुअल सेंटर, सोचना समझना, जिससे हम जज करते हैं, समझते हैं चीजों को, लॉजिकल सेंटर, लॉजिकल सेंटर भी बोलते हैं। लेकिन प्रिंसिपल क्या होता है? अमिगडाला अगर एक्टिव, ओवर एक्टिव हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है तो ये प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स को सप्रेस या रिप्रेस कर देता है। ओके? अगर अमिगडाला नेगेटिव है तो प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स को भी वो काम करने नहीं देगा। ये एक सिद्धांत है, मेडिकल प्रिंसिपल है। ये बहुत ऑब्वियस भी है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई, हमारा कलीग है जो बहुत दुखी परेशान है, किसी कारण से उसको बॉस ने डांट दिया या कुछ उसके साथ हो गया। अब हम उसको समझाते हैं कि देखो भाई आप नाराज मत हो, कोई बात नहीं, ये होता रहता है, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। होता है ना ऐसा, अभी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे आपको इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है? बच्चों को भी कहते हैं क्या इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है? हस्बैंड वाइफ को भी कहते हैं क्या इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आती है आपको? उसको नहीं समझ में आ रही है, ही इज राइट, शी इज राइट। प्रॉब्लम क्या है उसका? अमिग्डाला सप्रेस्ड है, नेगेटिव है, वो लॉजिक को भी समझने नहीं देगा, उसको नहीं समझ आ रहा है। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को कहां लेके जाते हैं? काउंसलर्स के पास, हमारे पास भी लेकर आते हैं। ये बच्चा नहीं सुनता है हमारी, आप समझाओ। काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट समझाते हैं तो सुनते हैं, काउंसलर्स के पास ले जाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आप उसके पेरेंट्स हो, बचपन से उसको जानते हो, आपने उसको जन्म दिया है, बड़ा किया है, उसके लिए तो आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। और वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, काउंसलर की बात सुन रहा है जो पहली बार मिल रहा है, ऐसा क्यों? काउंसलर पहले क्या करता है मालूम है? वो पहले अमिग्डाला को ठीक करता है, और अमिग्डाला ठीक होगा तो लॉजिक भी समझेगा। हम डांटते हैं, तुम्हें ये भी नहीं आता है। अब एक मदर बच्चे को पढ़ा रही थी, मैं देख रहा था, 6 साल की बच्ची थी। क्या तुम्हें ये भी नहीं आता है? इतना आसान भी नहीं आता है, ये तो आना चाहिए ना, ये भी नहीं आता है। वो बच्ची ने इतने मासूमियत से कहा, मम्मी मैं नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं आता है, इतना जेंटली। और वो बच्ची ब्रिलियंट बच्ची थी। प्रॉब्लम क्या हुआ? उसकी मदर ने उसके अमिग्डाला को बिल्कुल डाउन कर दिया, उसका लॉजिक, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स कुछ नहीं काम करेगा, नहीं करेगा। और आपको इसके ऑपोजिट आपने सुना होगा, थॉमस एल्वा एडिसन, सबको पता है ना, पता है बल्ब का आविष्कार किया था। 7 से 8 साल के थे वो। उनको एक प्रिंसिपल ने चिट्ठी दी और कहा अपनी मम्मी को दे देना, मम्मी को दे देना। उन्होंने चिट्ठी दी, कहा मम्मी इसमें क्या लिखा है? उन्होंने कहा इसमें लिखा है कि आप इतने ब्रिलियंट है आपका बच्चा कि इसको स्कूल की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ वैसे ही कर लेगा। ठीक है, बाद में जब आविष्कार हो गया, सब कुछ हो गया, जब उनकी मदर की डेथ हो गई तो संदूक में वो चिट्ठी निकली, और उसमें जब थॉमस एल्वा एडिसन ने देखा तो पता है क्या लिखा था? क्या लिखा था? कि आपका बच्चा इतना बेवकूफ है, ये स्कूल के लायक ही नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो इस चीज को हम कितना निग्लेक्ट करते हैं। और सिर्फ हम दूसरों के साथ तो छोड़ो, खुद के साथ कितना हम सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं, खुद को कितना कर्ज करते हैं, खुद गलती हो जाए, अरे भाई इंसान है, गलती हो गई यार, क्या इतनी बड़ी बात है? लेकिन हम खुद के ही अमिग्डाला को कितना नेगेटिव करते हैं, और फिर कहते हैं मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। कितना बड़ा चेंज करना है, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ प्लेसिबो में उसके अमिग्डाला को ऊपर उठा दिया, और फिर लॉजिक उसको समझ में आ गया कि ये रोल एज्यूम करने से इकोनॉमिक प्रॉब्लम ठीक होने वाली नहीं है। लॉजिक तो यही है ना, उसको लोगों ने समझाया कि भाई अगर आप ये कर भी लोगे आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, लेकिन समझाने का तरीका वो अमिग्डाला को उठा के नहीं था, वो इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस वाला नहीं था। तो रूमिनेशन, तो आप समझ ही गए ये व्यक्ति की ऐसी हालत क्यों हुई, दी हैप्पीनेस इफेक्ट। और ये प्रूवन है, ब्रेन एक्ट लाइक अ सर्किट, सर्किट होता है जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना, यहां पर ये जो सर्किट है आप देख रहे हैं, न्यूक्लियस एकम्बंस, अमिग्डाला, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, ये सारे इमोशनल सर्किटरी बनाते हैं, ओके, जिसको हमारी भाषा में लिम्बिक सर्किटरी कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में, न्यूरोलॉजिकल भाषा में। और इसका बहुत बड़ा रोल है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ, बुद्धि के साथ, बुद्धि के साथ। लव इज ब्लाइंड कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, हम सब ने सुना है। हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन साथ साथ में इंसान भी तो हैं, हमारे भी तो इमोशंस हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम सिर्फ मरीज ही ठीक करते हैं, हमारी लाइफ भी तो है। लव इज रियली ब्लाइंड, सही बात है, क्योंकि जब अमिग्डाला लव के इफेक्ट में होता है ना, तो वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हाईजैक कर लेता है। इसलिए जिससे प्यार होता है उसकी हर बात मान लेते हैं, और जिससे थोड़ी सी भी नफरत होती है ना, वो लॉजिक बात भी करेगा ना, तो भी हम उसमें निकाल देंगे आर्ग्यूमेंट करके, नहीं नहीं तुम गलत हो। ठीक है, तो एक्चुअली में अमिग्डाला बहुत स्ट्रांग है, बुद्धि नहीं दिल, इसलिए कहते हैं दिल दिमाग पर हावी हो जाए। ओके, तो ये जब हमने सारी स्पिरिचुअल नॉलेज ली ना, तो हमें तो लगा है तो पूरी मेडिकल साइंस पढ़ा रहे हैं मुझे, पूरी मेडिकल साइंस ही, और ब्रेन की साइंस है क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट ने, हमने तो ब्रेन की साइंस पढ़ी थी। और जब ये कॉन्सेप्ट पढ़े कि भाई दिल भी होना चाहिए दिमाग भी होना चाहिए, तो हमें समझ में आया अमिग्डाला भी जरूरी है लॉजिक भी। अब ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ प्यार ही प्यार होगा, नहीं तो प्यार अंधे में, अब वो उसको फिर कहते हैं अटैचमेंट। जैसे पेरेंट्स अगर बहुत अटैच हैं तो वो अमिग्डाला अगर बहुत ओवर एक्टिव हो गया और लॉजिक बिल्कुल जीरो कर दिया, तो धृतराष्ट्र महाराष्ट्र में हम सॉरी महाभारत में जानते हैं ना कैसे प्रॉब्लम हुआ, तो वो भी नहीं। तो बैलेंस चाहिए लाइफ में, तो जहां दिल है वहां पर दिमाग अपने आप आ जाएगा। और ब्रेन्स तो हमेशा नंबर वन होते ही हैं, तभी तो हम नंबर वन यहां सब बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स नंबर वन होते हैं। लेकिन साथ में अमिग्डाला का भी पावर मिल जाए तो बल्ले ही बल्ले, और फिर एक और एक दो नहीं होगा, एक और एक 11 हो जाएगा। अब देखने का नजरिया है, ये फिंगर्स दो नहीं बता रही हैं, 11 बता रही हैं, सिम्बायोसिस है ये। ओके, सो द वर्डिक्ट इज, द डायग्नोसिस इज, हाँ, द आरएक्स, द ट्रीटमेंट इज, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सोल माइंड बॉडी इंटरफेस। अभी तक हम बॉडी जो दिखाई दे रहा था, द मैनिफेस्टेड बॉडी, उसी को ही सब समझ रहे थे, माइंड को थोड़ा बहुत समझते थे। सोल का वर्ड आते ही नहीं नहीं ये मेरे मतलब की बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली में स्टार्टिंग कहां से हो रही है, सोल से। सोल और द कॉन्शियसनेस इज द अनमैनिफेस्ट कोर, जो दिखाई नहीं देगी आपको इन आंखों से, लेकिन वही कोर है। कोर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हम कहते हैं ना गो टू द कोर। आजकल के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो क्या सुपरफिशियल नॉलेज आपको है, ऊपर ऊपर का पता है, आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, ऐसे ही कहते हैं ना। बेसिक स्ट्रांग नहीं है, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, बिल्डिंग शेकी होगी, शेकी होती है ना, और यही हो रहा है। ऊपर ऊपर का पढ़ के रट के जवाब दे दिया, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स नहीं निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोर नहीं स्ट्रांग है। तो वो कोर है, वो एक पेन ड्राइव है जिसमें इंप्रेशंस छिपे हुए हैं, वो संस्कार हैं, और वो संस्कार मैनिफेस्ट होते हैं मन के द्वारा, थ्रू द मीडिया ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में वो प्रोसेस चलेंगे, लेकिन एक्चुअली में वो प्रोसेस सिर्फ एक माध्यम है, और मन क्या करता है, उसके द्वारा थॉट्स जनरेट करता है। लेकिन हम मन को बहुत गाली देते हैं ना, मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। आई होप ये एयर नहीं हो रहा है, क्योंकि पेशेंट सुनेंगे तो कहेंगे डॉक्टर्स का मन ही काबू में नहीं है, वो हमारा मन क्या काबू में करेंगे। काबू में है, लेकिन और करना है। तो मन को गाली नहीं देना, क्यों? मन सिर्फ एक माध्यम है, वो सोचने का एक माध्यम है। एक्चुअली में जैसे संस्कार हमारे होंगे उसके हिसाब से ही हमारी सोच होगी। सर विलियम ऑस्लर, आप सब लोगों ने हचिसंस का नाम सुना ही है, मेडिसिन में पढ़ते थे ना हचिसंस टेक्स्ट बुक, उसमें पहली लाइन लिखी है, विलियम ऑस्लर हैज सेड, आई सी व्हाट द माइंड नोज। जो आपके संस्कार नहीं है ना, वो आप वैसा कभी सोच नहीं सकते, वैसा सोच नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर पैथोलॉजिस्ट होंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी होंगे। अगर मैं आपको वो एक स्लाइड दिखा दूं माइक्रोस्कोप में, या एक एक्सरे रेडियोलॉजिस्ट होंगे, जो उनको दिखाई देगा उसमें क्या आपको दिखाई देगा? नहीं, सामने होगा भी फिर भी आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपके वो इंप्रेशन में नहीं है। तो सोल के इंप्रेशन में अगर वो नेगेटिविटी नहीं है ना, तो वो थॉट्स में आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। अगर मेरे इंप्रेशन में सिर्फ लव, पीस, हैप्पीनेस, प्योरिटी है, तो बाहर कैसी भी सिचुएशन हो, मैं उन्हीं संस्कार के थ्रू वही थॉट्स क्रिएट करूंगा। कौन से वाले? जिसमें लव होगा, पीस होगा, प्योरिटी होगा। इसीलिए एक ही सिचुएशन में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग थॉट्स क्रिएट करते हैं, अलग अलग इमोशंस होते हैं उनके। क्यों? क्योंकि उनके इंप्रेशंस अलग अलग हैं, और इंप्रेशंस किस में है? वो सोल में है। अब एक ही घर में दो बच्चे हैं, दोनों के अलग अलग संस्कार हैं, वो लेके आए हैं अपने संस्कार, वो कॉन्शियसनेस ट्रांसफर हुई है उस बॉडी में, तो वो अलग अलग रिएक्ट करते हैं। खिलौना टूट जाएगा, एक बच्चा रोने लगेगा, एक बच्चा शांत रहेगा। खिलौना भी वही है, माता पिता भी वही है, सब कुछ वही, इंप्रेशंस अलग हैं। तो तो ये सोल हैं। अब ये दो क्यों हैं ये बताएंगे। तो सोल ने क्या किया, सोल के अंदर इंप्रेशंस हैं। जब तक कि माइंड का इंटरफेस नहीं होगा सोल कुछ नहीं कर सकती। सोल कैन नॉट डू एनीथिंग क्योंकि वो सिर्फ एक कोर है, वो बीज है। बीज से फ्रूट नहीं मिल सकता जब तक कि वो पेड़ ना बनाए। तो सोल कुछ नहीं कर सकती जब तक कि उसको ब्रेन और माइंड का माध्यम ना मिले। जैसे करंट विदाउट वायर बल्ब नहीं जला सकता। और फिर जब वो सोल इंप्रेशंस आते हैं माइंड के थ्रू, वो थॉट्स क्रिएट करता है और थॉट्स न्यूरॉन्स जो फिजिकल एस्पेक्ट है उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे जाके इम्पल्सिस जो हैं वो पूरे बॉडी में, हार्ट, लिवर, किडनी, हैंड्स, लेग्स, सब जगह वो सिग्नल जाते हैं और वो एक्शन प्रोड्यूस होता है। इसीलिए ब्रेन मास्टर ऑर्गन है, ब्रेन मास्टर ऑर्गन है। लेकिन ये थॉट करने वाला कौन, मन। देख रहे हैं ना, पहले थॉट आता है फिर इम्पल्स आता है। लेकिन मन भी किसके हिसाब से सोचता है, थॉट्स कौन से क्रिएट करता है, जो सोल में इंप्रेशंस होते हैं, जो कॉन्शियसनेस में इंप्रेशंस हैं। अब यहां पर दो क्यों दिखाए, क्वालिटी मन की नहीं होती, क्वालिटी होती है सोल की। तो ये है ग्रीन मतलब अच्छा, गुड क्वालिटी सोल, बैड क्वालिटी सोल। तो बॉडी और गुड और बैड नहीं होती, माइंड गुड और बैड नहीं होता, सोल गुड और बैड होती है। सोल गुड और बैड मतलब इंप्रेशंस उसकी जैसे होंगे वैसी उसकी क्वालिटी होगी। इसीलिए देव आत्मा और दैत्य आत्मा या आसुरी आत्मा कहा जाता है, डिवाइन सोल इविल सोल कहा जाता है। इविल बॉडी या डिवाइन बॉडी तो नहीं कहते ना। तो इविल सोल अगर है जैसे ये है तो वो थॉट्स भी उसके कैसे निकलेंगे, इंप्रेशंस क्योंकि नेगेटिव हैं तो थॉट्स भी नेगेटिव होंगे और वो सर्किट भी नेगेटिव जाएगा, एक्शन भी फिर वो नेगेटिव करेगा। और अगर डिवाइन सोल है, डिवाइन सोल का मतलब सिर्फ उसके क्वालिटीज, ये नहीं कि वो एक्शन अच्छे करेगा। डिवाइन सोल का मतलब ये है उसके अंदर वो पावर भी है टू फेस सिचुएशंस। वो हर चीज को पॉजिटिव लेगा, हर चीज में वो देखेगा कि मैं इससे कैसे बाहर अच्छे से आ सकता हूं, उसके अंदर स्ट्रेंथ भी होगी। वो सोल माइंड के अंदर से थॉट्स भी अच्छे आएंगे और एक्शंस भी अच्छे होंगे। और वो कैसी भी नेगेटिविटी हो बाहर, कुछ भी हो, हमारे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, कितना भी हमारे टफ जॉब हो, लाइफ में स्ट्रेस हो, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, लेकिन उसमें वो रास्ता ढूंढ ही लेगा। क्यों? क्योंकि उसके इंप्रेशंस वो सेवन क्वालिटीज के ऊपर बेस्ड हैं जो हमने देखा था, पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, लव, पावर, ब्लिस एंड नॉलेज। वो आप आगे डिटेल में देखेंगे। इट्स एक्चुअली द सोल विच इज द अनमैनिफेस्ट, जो दिखाई नहीं देती है, वो सब कुछ कर रही है। और उसको ठीक कर लिया तो सब आगे ठीक हो जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज एनीबडी हु कैन आइडेंटिफाई दिस पर्सन, चॉकलेट फॉर हिम। ओके, कैन वी हैव द स्क्रीन प्लीज। The PowerPoint presentation is not visible. Okay? Yes? He is? We will take questions later on. Just we'll finish it off and then we'll take questions. Who is this person? Chocolate for the one who answers this question. Ye kaun hai? Kaun hai? No idea. He is René Descartes. Okay? He lived in 16th century. He was a European scholar, philosophist, psychologist. He did lots of work on brain, mind and body. Brain, mind and body and the soul. He did experiments. Us time pe jab koi x-ray nahi the, koi MRI CT nahi tha, unhone ye bata diya ki control sara brain se hota hai. Through his experiments. Aur kaise hota hai? Ek input aata hai aur brain process karta hai aur fir wo bahar nikalta hai. And what he said, just see, on the one hand, I have a clear and distinct idea of myself. Main kaun hoon? Given that, I am only a thinking thing. Main sirf ek sochne wali cheez, vastu, matlab ek chaitanyata jo soch sakti hai, jiske paas ability hai. Lekin sochne ke liye usko kya chahiye? Kya chahiye sochne ke liye? Madhyam chahiye. माइंड और बॉडी का माध्यम एंड नॉट एन एक्सटेंसिव वन. जो इतना बड़ा दिख रहा है ना वो मैं नहीं हूं. ऑन द अदर हैंड आई हैव अ डिफरेंट आइडिया ऑफ द बॉडी. बॉडी डिफरेंट है गिवन दैट इट इज ओनली एन एक्सटेंसिव थिंग. वो सिर्फ एक बड़ा बड़ा जो दिख रहा है वो है. एक्चुअली में वो कुछ नहीं है और वो सिर्फ एक माध्यम है. एंड नॉट ए थिंकिंग वन. बॉडी नहीं सोचती है. दस इट इज ट्रू दैट आई दैट इज माई सोल एंड आई वुड रादर से आई द सोल थ्रू विच आई एम वॉट आई एम. जो चैतन्यता है वही एक्चुअली में जो मैं हूं वो उसी की वजह से हूं क्योंकि उसी में इंप्रेशंस हैं. इज एंटायरली एंड ट्रूली डिस्टिंक्ट. बिल्कुल अलग फ्रॉम माई बॉडी. इससे बिल्कुल अलग है वो. एंड इट कैन बी और एग्जिस्ट विदाउट इट. द कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट विदाउट द ब्रेन एंड द बॉडी. वही इम्पेरिशिबल है वही इमॉर्टल है. इसीलिए यहां पर कहते हैं आत्मा ना तो कभी पैदा होती है ना मरती है. वो सिर्फ ट्रांसफर होती रहती है. उसके संस्कार उसके साथ जाते हैं ट्रांसफर होते हैं और इसीलिए वो संस्कार नेक्स्ट बर्थ में दिखाई देते हैं. तो आत्मा में क्या है? संस्कार है. आत्मा में क्या है? वो इंटेलेक्ट है. वो मेमोरीज हैं. और क्या है? वो मन. जब वो बॉडी में आती है तो वो मन के द्वारा वो माइंड के द्वारा वो थॉट प्रोड्यूस करने की पावर है. तो सोल इज व्हाट? कल्मिनेशन ऑफ द लिविंगनेस प्लस द इंप्रेशंस प्लस द इंटेलेक्ट एंड द माइंड द थिंकिंग पावर. सो लेडीज एंड जेंटलमैन बी सोल कॉन्शियस. व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड आई होप आपने भी इसको कुछ समझा होगा. आगे 3 दिनों में और आप समझेंगे. एक्चुअली में हम सोल हैं एंड इम्बाइब गॉडली इंप्रेशंस. वो दिव्य संस्कार. गॉडली मीन्स दिव्य संस्कार. वो हम इम्बाइब करेंगे. अगर वो जो व्यक्ति जो था जिसको पैराप्लीजिया था अगर उसके अंदर वो संस्कार होते वो अपने आप को एक आत्मा समझ के वो संस्कार पावर लव पीस हैप्पीनेस इनको यूज करते हुए प्रॉब्लम को फेस करता तो वो आज पैराप्लीजिक नहीं होता. वो पैराप्लीजिया में नहीं जाता. वो पैर खराब नहीं होते उसके क्योंकि उसके लिए बॉडी इंपॉर्टेंट हो गई थी. बॉडी से रिलेटेड चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी. एक्चुअली में ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं लेकिन उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी पीस है मेरी हैप्पीनेस है मेरी पावर है. तो फिर जो कहते हैं दाओ शैल लिव लाइफ लाइक अ केयर फ्री एम्परर. बेफिक्र बादशाह. खुद का खुद मालिक हूं मैं. सोल को बाहर की चीजों से फर्क नहीं पड़ता. सोल अगर पावरफुल है तो वो बाहर की चीजों को कंट्रोल करेगी ना कि उनसे कंट्रोल होगी. और क्योंकि बॉडी बाहर की चीजों से ही बनी हुई है. ये बॉडी क्या है? 5 एलिमेंट से बनी हुई है. तो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर से वो इन्फ्लुएंस होगी ही होगी ना चाहते हुए भी होगी. यू कैन नॉट कंट्रोल इट. बाहर सर्दी है तो आपको सर्दी लगेगी. बॉडी को लगेगी सोल को नहीं लगती. अगर आपने वो कॉन्शियसनेस शिफ्ट कर लिया है फ्रॉम बॉडी टू द सोल. अब सोल को बाहर के फैक्टर्स वेदर हो बाहर की कंडीशंस हो वो बॉडी को असर जरूर कर सकती हैं सोल को नहीं. तो आप अनटच्ड हो जाते हैं अनशेकेबल हो जाते हैं. और जो अनशेकेबल है वो तो खुश रहेगा और जो शेक होता रहेगा वो दुखी रहेगा. तो इसीलिए बेफिक्र बादशाह और यू बिकम द केयर फ्री एम्परर इफ यू हैव सोल कॉन्शियसनेस. एंड नॉट जस्ट सोल कॉन्शियसनेस. व्हाट काइंड ऑफ सोल? हु हैज दीज हाइएस्ट ह्यूमन वर्च्यूज विच सेपरेट्स अस फ्रॉम अदर स्पीशीज. जो हमें बाकी और प्रजातियों से भिन्न करते हैं. हमारे कार्य हमारे संस्कार हमारे इंप्रेशन वो रियल ह्यूमन हो. वो लव के हो पीस के हो. झगड़ा करना लालच करना ईगो दिखाना ये तो एनिमल वर्च्यूज हैं. ये हमारे कब से हो गए? एक्चुअली में सोल को जब हम भूल गए उसके वर्च्यूज को भूल गए तो ये प्रॉब्लम्स आई. तो लेडीज एंड जेंटलमैन इट्स टाइम टू कम बैक टू आवर ओन ओरिजिनल सेल्फ एंड इट्स इंप्रेशंस. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. Now, can we invite some questions, our sister? Okay, so we have 15 minutes. It's 8:15. Jo questions hain, we can have a brief discussion. Yeah. Can we give a mic to him so that everybody can listen? आपका थोड़ा सा वॉइस नहीं आ रहा है सो आप माइक दे रहे हैं उसमें बताइए.
फिनोमेना
जी,
आइसबर्ग फिनोमेना के बारे में पढ़ा है. अब जो कॉन्शियसनेस है आइसबर्ग के सबसे ऊपर वाली के लेयर हो गए, 20 के लेयर हो गए और बहुत ऐसी लेयर जो नीचे है जो दिखती नहीं. माइंड में भी जैसे आपने कॉन्शियसनेस बताया 20% से 30% कॉन्शियसनेस अपन को एज ए बिहेवियरल लेयर दिखती है, बाकी सब अनकॉन्शियस माइंड में रहती है. अब अनकॉन्शियस माइंड में जो है दो चीजें हैं, एक सुपर कॉन्शियस हो गए जो कि अपन कहते हैं पैरासाइकोलॉजी, और दूसरा एक साइकोलॉजिकल पार्ट जो कि हमको दिखता नहीं है और हम घूमता रहता माइंड में समुद्र जैसे पूरा. अब प्रश्न यह है कि गई जब ये कॉन्शियस नाइन तो कॉन्शियसनेस के बात आती है हमारी, अगर जाए तो कॉमन स्टेज आती है. कॉमन स्टेज का फिर डीप स्लीप जिसमें हम कहते हैं आत्मा की उसमें सोल जो रेस्ट करती. अब ये जो है जैसे अपन ने कहा कि जो कॉन्शियसनेस ट्रांसफरेबल है जैसे आपने कहा है ना, प्लास्टिसिटी माइंड का एक बहुत बड़ा फंक्शन है प्लास्टिक बिहेवियर. तो जब ये हम कॉन्शियस से ट्रांसफर होते हैं ट्रांसफर तो कोर एनर्जी में एकत्र हो गई, स्टैटिक एनर्जी
राइट
ब्रेन में, दैट इज सोल इज.
तो इस पे हम आपको बिल्कुल, तो एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सब कॉन्शियस माइंड जो आप कह रहे हैं. जो आइसबर्ग का एक हम देखते हैं डायग्राम उसमें ऊपर दिखाते हैं कॉन्शियस माइंड है और नीचे जो छुपा हुआ है वो सब कॉन्शियस माइंड. तो आप बैठ जाइए, इसको कंपेयर करते हैं. कॉन्शियसनेस जो है वो सिर्फ एक लाइवलीनेस है, ओके okay? वो चैतन्यता है जो जब बॉडी के साथ कंबाइन होती है तो अपने आप को मैनिफेस्ट कर पाती है. माइंड का कोई अस्तित्व ही नहीं है जब वो कॉन्शियसनेस बॉडी से सेपरेट है, ओके okay? तो कॉन्शियसनेस वो लाइवलीनेस है जो बॉडी को लाइव बनाती है, इसीलिए लिविंग बीइंग कहते हैं. ठीक है, जब कॉन्शियसनेस एंटर कर गई बॉडी में अब माइंड के थ्रू वो काम करना शुरू करेगी. माइंड इंटरफेस है बिटवीन द बॉडी एंड द कॉन्शियसनेस. माइंड दो तरह के बताए गए हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड है जो लॉजिकल माइंड है जिससे हम समझते हैं चीजों को. जैसे हमने आज आपको समझाया कि आज गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो कॉन्शियस माइंड मन जो है वो थॉट कैसे क्रिएट करेगा, हाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि खराब है, इससे हमारे रिलेशनशिप खराब होते हैं. लेकिन उसके पीछे एक और मन है, थिंकिंग मन है जो थॉट क्रिएट कर रहा है. वो कौन सा मन है? वो इमोशनल माइंड है. अब हमें समझ तो आ गया लेकिन अभी हमें किसी ने कुछ कह दिया या कुछ हो गया, कितने लोग यहाँ पे गुस्से पे कंट्रोल कर पाएंगे सुनने के बाद भी? अ हैंडफुल. पक्का? अच्छा, अभी आके आपके पेशेंट को किसी ने, सिस्टर ने गलत दवाई लगा दी और आप ना चिल्लाओ, हो सकता है? नहीं हो सकता. क्यों? समझ है कि एंगर इज नॉट गुड, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड डीप लेयर में बैठा हुआ है. वो इमोशनल माइंड है, वो इमोशनल माइंड जो डीप लेयर में है उसको जब तक चेंज नहीं किया है एट द लेवल ऑफ डीप इमोशनल माइंड, तब तक वो चेंज सुपरफिशियल है. एक लाउत्सी थे, ही वॉज अ चाइनीज मास्टर. तो उनके पास एक व्यक्ति आया, उन्होंने एक बार डिस्कोर्स किया और उन्होंने समझाया कि देखो गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा अच्छी आदत नहीं है. तो सबने कहा सत्य वचन महाराज, बहुत अच्छी बात बताई आपने, सब घर चले गए. एक व्यक्ति अगले दिन उनके पास फिर आया, कहता महाराज मुझे दोबारा समझाइए. उन्होंने समझा दिया. तीसरे दिन फिर वो व्यक्ति आया, महाराज मुझे दोबारा समझाइए. अब जो महाराज के साथ जो लाउत्सी मास्टर के पास उनके जो डिसाइपल्स थे वो कहने लगे इतनी छोटी सी बात है क्या नहीं समझ में आया, आप तीसरे दिन आ गए. अब मास्टर के सामने कोई क्या बोलेगा, तो चलते रहा। 21 दिन तक वो व्यक्ति आया, 21 डेज ही केम, 22nd डे नहीं आया। अब यहां पर डिसाइपल्स को प्रॉब्लम हो गई, क्या है 21 दिन तक तो आए, अब 22वें दिन क्यों नहीं आ रहे हो आप। तो उनके वो घर गए, पूछा तो कहा कि आप आए नहीं। कहते अब मुझे समझ में आ गया कि एंगर नहीं करना चाहिए और शांत अच्छा है। तो उन्होंने कहा ये तो पहले ही दिन बता दिया था, इसमें क्या बड़ी बात है। तब लाउसी ने समझाया यही ओनली पर्सन है जिसने एक्चुअली में अपने एंगर पर विजय प्राप्त की है, हु हैज वॉन हिज एंगर। आप सब लोग अभी भी क्या गुस्से पे कंट्रोल कर पाए, नहीं, हमें आ जाता है इसको, क्योंकि इसने डेली उस चीज को रिवाइज किया, रिपीट किया, और वो जो सबकॉन्शियस माइंड डीप में था ना, इमोशनल लेवल पर भी था, उसको भी टैकल कर लिया। इसीलिए अमिगडाला जो इमोशनल माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ। और वो कब मैनिफेस्ट होता है पता है सबसे ज्यादा कब होता है, सोने में, नींद में। हम ऊपर ऊपर से जब कॉन्शियस होते हैं तब तो सब कर लेते हैं, कंट्रोल कर भी लेंगे जैसे आपने कहा, लेकिन ड्रीम्स में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो तब क्या होता है, कॉन्शियस माइंड सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड सरफेस अप कर जाता है। तो अगर आपको रियल में अपनी प्योरिटी चेक करनी है कि आपका संस्कार रियल में चेंज हुआ नहीं हुआ, सबकॉन्शियस माइंड से भी वो चेंज हुआ है नहीं हुआ है, तो उसकी पहचान है आपके ड्रीम्स में भी वो संकल्प नहीं आएगा। ओके, तो वो है माइंड की बात है। कॉन्शियसनेस अपनी एक अवस्था है, वो एक स्थिति है, जब वो बॉडी में कंबाइन होगी तो वो मैनिफेस्ट करना शुरू करेगी इन द फॉर्म कुछ कॉन्शियस माइंड, कुछ सबकॉन्शियस माइंड, कुछ लॉजिक, कुछ इमोशंस। ओके, और कोई किसी का क्वेश्चन है तो आगे आके अब उनको चांस देंगे नेक्स्ट एक बार। आइए आइए आके पूछिए। यस श्योर, वन बाय वन।
ओम शांति, गुड मॉर्निंग, यू हैव एक्सेलेंट सेशन। I have a question. In real practice in neurologists, we deal with true epilepsy, true paraplegic. If they are psychological, it definitely your videos are worth listening and imbibing. But if there are three conditions, if it is pure psychology, we saw it. If it is true illness, what is your approach of Brahma Kumari in that? And if there is a mixture, sometimes we have true and pseudo seizures also. I'm a neurologist, so I'm just asking, how do you deal and what is your experience in dealing with true diseases?
Right. In fact, agar aap dekhen ki jo true diseases hain, jaise epilepsy hai, stroke hai, ya heart attack hai, koi bhi disease le lijiye aap, uske andar psychology ka bahut important role hai. Pure medical illness kuch bhi nahi hai. प्योर सिर्फ एट द लेवल ऑफ हम कहें कि ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, उसमें साइकोलॉजी का मिक्स होता है फॉर सिंपल reasons. स्ट्रोक आज हम देखते हैं यंग लोगों में हो रहा है, ठीक है, पहले देखते थे हम 60 इयर्स प्लस हो रहा है। हार्ट अटैक आप देखिए, पहले ओल्ड एज में होता था, अब यंग लोगों को हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों? अगर प्योर मेडिकल डिजीज होती तो ओल्ड एज में होनी चाहिए थी। फिर हम कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये हो रहा है। तो स्ट्रेस क्या है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही तो है। स्ट्रोक और हार्ट अटैक अगर स्ट्रेस से हम कहते हैं, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, वो साइकोलॉजी है। तो हमने क्या समझा कि जो डिजीज है वो सिर्फ एक फिनोमिना जो हमें दिख रहा है कि हार्ट में क्लॉट आ गया, ब्रेन में क्लॉट आ गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन वो क्लॉट जो बन रहा है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। ओके, यहां पर एक प्रोग्राम होता है कैड, उसमें क्या करते हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता रन करते हैं, विदाउट जिनको बाईपास सर्जरी एडवाइस की जाती है या स्टेंटिंग एडवाइस की जाती है हार्ट के लिए, उनमें वो विदाउट स्टेंट और विदाउट बाईपास सर्जरी ब्लॉकेट खोल देते हैं। कैसे? उनके साइकोलॉजी को चेंज करके। साइकोलॉजी हमने देखा ना, प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट, वो जब हमारी साइकोलॉजी ऑल्टर्ड होती है तो हमारे ब्रेन के केमिकल्स भी डिस्टर्ब होते हैं। आप जानते हैं एपिलेप्सी, जैसे आपने बताया एपिलेप्सी, जब मरीज दवाई ले भी रहा है उसको फिर भी दौरे कब आते हैं, हम पूछते हैं अच्छा आपको कोई एग्जाम्स तो नहीं थे, कोई नींद तो कम नहीं थी, कोई स्ट्रेस तो नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि इनसे चांसेस सीजर्स के आने के बढ़ जाते हैं। हमें पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स तो नहीं थी, या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, अच्छा वो बताते हैं कि इनको ना बहुत स्ट्रेस हुआ, कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ और हार्ट अटैक आ गया। लेकिन ये हो कैसे रहा है, यही तो हमें जानना है। ये जब स्ट्रेस आया या नींद कम हुई या फिर एग्जाम आए, प्रेशर आया, तो उससे हमारे ब्रेन के केमिकल्स रिलीज होते हैं। कौन से? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। कॉर्टिसोल सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, ये हम जानते हैं। सिंपैथेटिक एक्टिविटी से बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, ग्लूकोज बढ़ता है, इसीलिए डायबिटीज बहुत बढ़ जाता है। और जब ग्लूकोज बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, हार्ट बीट तेज होगी, तो क्या होगा? अटैक्स आएंगे। एपिलेप्सी में भी क्या है, एपिलेप्सी जो आपने कहा, एपिलेप्सी में ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है। अब कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कम करते हैं। और जब साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है तो जो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाते हैं वो वाले हार्मोन्स ज्यादा बनते हैं। तो इसीलिए एक्चुअली में कोई भी बीमारी आप ले लीजिए उसमें दोनों फैक्टर्स हैं। तो जब मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे ट्यूमर है, एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट किया यूएस में हुआ प्लेसिबो के ऊपर। उन्होंने दो पर्सन को लिया जिनको गैस्ट्रिक अल्सर था, पेट में अल्सर था 5 mm का। दोनों को फॉलोअप किया 5 साल तक, 3-3 महीने में अल्ट्रासाउंड करते थे उनका, और एक को कहते थे, दोनों को प्लेसिबो दिया, लेकिन एक को बोला कि आपको जो मेडिसिन दे रहे हैं ना बहुत अच्छा असर कर रही है, और दूसरे को बोला कि नहीं आपका तो ये कैंसर बनता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और 5 साल के बाद आप समझ ही सकते हैं, जिसका बोला था कैंसर बनेगा उसका एक्चुअली में उसमें चेंजेस आ गए मेलिग्नेंसी के, कैंसर के, और जिसको बोला ठीक हो रहा है उसका ठीक हो गया। इट्स अ बिग साइंस, इट्स अ बिग साइंस। तो हम मेडिसिन दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि हम सर्जरी कर रहे हैं वो करना है, वो फिजिकल चीज अगर प्रॉब्लम है तो फिजिकल को काटेगी, लेकिन जो साइकोलॉजी जो पीछे काम कर रही है उसको कहीं ना कहीं हमने निग्लेक्ट कर दिया है। हम बहुत मैकेनिकल हो गए हैं, बॉडी कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गए हैं, हमने जो सोल और माइंड की पावर थी उसको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर दिया है। तो उसको हम फिर से रिवाइव करेंगे तो हमारे प्रैक्टिस में, मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत फायदा होगा। पेशेंट उस डॉक्टर के पास जाना चाहता है जो प्यार से बात करे, ज्यादा गोलियां नहीं दे, प्यार से बात करे। हमारे मरीज कुछ कुछ तो इसलिए आते हैं, कहते हैं आपकी स्माइल से ही हम आधे ठीक हो जाते हैं, शेयर करते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते होंगे कि आपकी स्माइल से ही डॉक्टर पेशेंट आधा ठीक, एंड दैट इज ट्रू। बस इसकी साइंस को हमें और जानना है। ओम शांति।
I am a strong believer of the soul, but through the science,
you believe it or not, soul exists. It's a fact.
Through eyes or through any mechanism, can we know the presence of the soul or absence of the soul?
Right.
And number two question, in the disease, whether there are any impressions on the soul due to old age, are there any impressions on the soul, whether these impressions are measurable?
Right. Okay. So his first question is ki whether the soul is absent or present, आप प्रूव कर सकते हो? So it's always said, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। The proof of the pudding lies in its taste. अब मीठा है, चीनी मीठी है, अब आपको कोई कहे कि मीठी नहीं है, कड़वी है, कोई मानेगा यहां? Everybody has experienced. हम medical doctors हैं, हम तो medical professionals हैं। मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूं, द मोमेंट माई सोल इज गॉन एंड आई एम डेड, आप जानते हो पोस्टमार्टम करेंगे, ऑल द ऑर्गन्स विल बी द सेम, सारे ऑर्गन्स वही होंगे, ब्लड भी वही होगा, सब कुछ वही होगा ना, लेकिन क्या चीज निकल गई? दैट लिविंगनेस हैज गॉन आउट। तो सोल हमने, क्योंकि आत्मा हमने समझ लिया कि तो ये कोई आध्यात्मिक जगत की बात है, नहीं, कॉन्शियसनेस तो है ना। क्या आप कॉन्शियसनेस को कह सकते हैं कि प्रूव करिए? कॉन्शियसनेस, अगर मैं बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, देख रहा हूं, इसका मतलब मैं कॉन्शियस हूं, ये हम कहते आए हैं। एक जो पेशेंट है जो डेड हो गया है या कोमा में है, हम कहेंगे नहीं ये सेमी कॉन्शियस है, ये डेड हो गया, कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है वो बोल नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है। तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लाइवलीनेस हमारे अंदर है जो इस चेयर में, इस टेबल में, इस लैपटॉप में नहीं है, तो कॉन्शियसनेस तो प्रूफ हो ही जाती है, वो है ही है। लेकिन दूसरा आपने कहा क्वेश्चन था कि ओल्ड एज में इंप्रेशंस क्या चेंज होते हैं, इंप्रेशंस रेगुलरली चेंज हो रहे हैं, मूवमेंट बाय मूवमेंट चेंज हो रहे हैं। अब जैसे हम ये बॉडी में ये सोल आई, ओके, ये कॉन्शियसनेस आई, हम यहां पर लर्न कर रहे हैं, हमने आई ये डिलीवर किया लेक्चर, इससे हमने भी कुछ सीखा, तो जो सीखा उसका इंप्रेशन कहां चला गया, सोल में। ये जो सब कुछ हुआ, जो आपने सीखा, हमने सीखा, आपने एक्सपीरियंस किया, मैंने एक्सपीरियंस किया, ये सारी चीजें हुई, लेकिन उसका एक इंप्रेशन, जैसे पेन ड्राइव को आपने कंप्यूटर में डाला और उसमें आपने कुछ डाटा जो कंप्यूटर का था वो पेन ड्राइव में डाल दिया, तो वो पेन ड्राइव में फीड हो गया इंप्रेशन के फॉर्म में। अब जब आप दूसरे कंप्यूटर में लगाओगे उसको, तो वहां पे वो प्ले करेगा। ऐसे जो आपने अब एक्सपीरियंस लिया है वो आपके सोल में इंप्रेशन बन के चला गया, चला गया, और वो फिर चाहे सोल अब ये बॉडी छोड़ भी दोगे तो वो नेक्स्ट बॉडी में वो इंप्रेशन काम करेगा। इसीलिए जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं या कुछ भी एक्वायर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो बिल्कुल प्योर हो अगर हम अपनी सोल को प्योर बनाना चाहते हैं, उसके इंप्रेशंस को प्योर बनाना चाहते हैं। ओके, ओम शांति।
गुड मॉर्निंग, ओम शांति। माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वन पेशेंट। आई एम एक्चुअली डॉक्टर अविनाश काळे। पेशेंट इज लेबल्ड एज पार्किंसन डिजीज इन 2017 बाय वन ऑफ द फेमस न्यूरोफिजिशियन। पेशेंट इज टेकिंग सिंडोबा प्लस रेजलेक्ट एंड प्राइमिवेक्स। ही इज अवेयर अबाउट कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। He is aware about Brahmagumari knowledge since 2003, reading the Avyaktavani also.
So why this disease?
Yes. And okay. He is aware about the placebo and nocebo effect. He is trying to not take medicine, in spite of he is required to take the medicine. I want guidance of that patient.
Bilkul. So question sir ka ye hai, ki ek patient hai jinko Parkinson rog hai, और वो काफी समय से इन चीजों को जानते हैं, मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करते हैं, सोल समझ के सोल को प्योर भी कर रहे हैं, प्योर कर रहे हैं ना, लेकिन फिर उनको पार्किंसन रोग कैसे हो गया, वो बाद में हो गया। वो सोल को प्योर कर रहे हैं, इसका मतलब सोल इम्प्योर थी तभी तो प्योर कर रहे हैं ना। तो जो इम्प्योरिटी में जो गलत काम कर दिए जाने अनजाने में, क्या उसका रिजल्ट नहीं मिलना चाहिए? सो ये कार्मिक थ्योरी है जो आपको आगे बताया जाएगा। जो अभी हम हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कुछ पास्ट जो इंप्रेशंस थे उसके थ्रू जो हमने कर्म किए उसका रिजल्ट हमें अभी सामने आ रहा है। ओके, तो पहले हम जो इम्प्योरिटी में हम कर चुके हैं गलत काम जाने अनजाने में, उसका रिजल्ट तो आएगा। एनी डिजीज उसका कुछ कारण है, कोई भी कुछ भी हो रहा है हमारे साथ उसका कुछ कारण है। अब जब उन्होंने प्योरिटी अपने आप को शुरू कर दिया है, प्योर करना शुरू कर दिया है, तो ये प्योरिटी धीरे धीरे उनको बेनिफिट देगा। ओके, तो ये तो सीधा हिसाब है, जो गलत कर दिया उसका गलत इफेक्ट आएगा, जो सही कर रहे हो उसका इफेक्ट भी अच्छा आएगा। अब इसमें वो कैसे अपनी पार्किंसन में हेल्प कर सकते हैं? पार्किंसन में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, आजकल एक स्टिक आती है, उस स्टिक से एक लाइट लेजर बीम होती है और वो बीम एक लाइन बना देती है आपके आगे। ओके, तो उनको अगर हम वो स्टिक देते हैं ना, तो वो लेजर बीम को देखकर कदम आगे उनका इजीली बढ़ता है स्टेप। ये थेरेपी हम यूज करते हैं, ये होता है, ये वेल डिफाइंड है। उसमें सारा रोल ब्रेन और माइंड का है, कैसे उसको इमेजिनेशन दिया जाता है कि आगे एक स्टेप है, तो माइंड उस सिग्नल को पिकअप करता है और वो आगे कदम बढ़ा लेता है। मतलब वो एक उसको एक स्टिमुलस की तरह यूज करता है माइंड कि मेरे को आगे कदम बढ़ाना है, और माइंड से कदम आगे बढ़ता है। एक्चुअली में जो फिजिकल जो हमारे पैर चलते हैं, कदम बढ़ते हैं, वो हमारे माइंड से स्टार्ट होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जो बुक्स में वेल डिस्क्राइब्ड है, न्यूरोलॉजी की बुक्स में और ये हार्जिसन में मेडिसिन की बुक में है। एक व्यक्ति था, उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, ठीक है, पूरा पैराप्लीजिक था, चल नहीं सकता था, 10 साल से बेड पर था। उस घर में आग लग गई जिस घर में था, और वो खुद उठ के वहां से भाग गया, वो व्यक्ति जो 10 साल से पैर हिलाया भी नहीं, आप जानते हैं। तो कैसे भाग गया वो, किसकी पावर थी वो? एक्चुअली में सोल की, सोल मैनिफेस्ट कर रही है। हम माइंड बोल देते हैं, माइंड क्या है? माइंड मैनिफेस्टेशन है सोल की पावर का। तो हमें वो अनमैनिफेस्ट को जानना है।
ओम शांति।
इज अवेयर अबाउट 7 qualities ऑफ सोल, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति। वो पूरा कुछ सब कुछ कर रहा है। एज इज डायग्नोसिस 46 years।
सर एक चीज बताइए, आप अभी एक पेशेंट आया, उसने बहुत शराब पिया, बहुत अल्कोहल लिया और उसका लिवर खराब हो गया। अब उसने कहा मैंने तो शराब छोड़ दिया, तो क्या एकदम ठीक हो जाएगा लिवर? टाइम लगेगा। तो ऐसे ही जो पहले हमसे, अब सोल की जब हम बात करें, सोल ने जो कुछ गलतियां कर दी जाने अनजाने, उसका इफेक्ट बीमारियों के फॉर्म में, डिजीज के फॉर्म में, पर्सनल रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट के फॉर्म में, इकोनॉमिक क्राइसिस के फॉर्म में, ये सब में आएंगे। ये कर्मिक थ्योरी है। लेकिन अब हम जब अच्छा करेंगे, ऐसा तो नहीं हम कहते ना कि अच्छा शराब पी लिया अब तो मर जाओ तुम जाके, हम कहते नहीं अभी भी आप चेंज करोगे तो बेटर हो जाओगे। एंड दैट इज वाई वी आर हेयर। हम यही सीखने आए हैं, जो अभी तक हम जाने अनजाने गलती कर रहे थे, अब और गलती हम ना करें। जैसे हम फिजिकल बीमारियों को ठीक करने के लिए फिजिकल मेडिसिन देते हैं, सोल को ठीक करने के लिए यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल मेडिसिन मिलेगी। ओम शांति। हम क्वेश्चंस बाद में लेंगे।
ओम शांति।
जस्ट 1 minute।
लेट्स हैव क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन।
दैट पेशेंट इज नथिंग, नो अदर देन मायसेल्फ।
अच्छा, ओके।
आई एम इन डाउट, आई डोंट हैव एनी पार्किंसन, बट इन स्पाइट ऑफ अवॉइडिंग मेडिसिन आई कुड नॉट अवॉइड। जैसे आई आस्क दिस क्वेश्चन एंड आई वांट देयर गाइडेंस।
ओके, तो अलग से हम आपसे बात करते हैं।
वी हैव अ सेपरेट सेशन, सो वी विल टेक द क्वेश्चन आंसर्स देयर। So today we are going to, so much thank you for Dr. Swatan Bhai for taking us to this wonderful journey, right? In the early morning it was a wonderful journey. So let's give a big round of applause for Dr. Swatan Bhai. So we learned how to manifest ourselves. So whole day we will be with our body. So how to manifest our body, right? Then we will be out of our medicine. So thought is a true medicine.